उसको कैसे पता चलता था कि आज गुरुवार है? बिल्कुल नियम था उसका कि वो गुरुवार के दिन कुछ भी टच नहीं करेगा, कुछ नहीं खाएगा। ऐसे ही एक तोता था पोपट, वो छत्तीसगढ़ में रविवार के दिन कुछ नहीं खाता था। कुछ भी उसके मुंह में आप बड़े प्रेम से खूब उसको फुसला करके दे दो तो भी रविवार का दिन होगा तो वो कुछ नहीं लेगा। और उसको कैसे मालूम पड़ता था कि आज रविवार है, ये भी भगवान जाने। तो ऐसा श्रुति ज्ञान होता है। अब मधुमक्खियों के 20 छत्ते लगे हैं किसी जगह, लेकिन कभी भी एक छत्ते की मधुमक्खी दूसरे छत्ते में भ्रमित नहीं होती। इनके पास मन नहीं है मधुमक्खियों के पास, लेकिन फिर भी श्रुति ज्ञान से वो इतना ज्ञान रखते हैं। तो फिर इंसान के ज्ञान का तो क्या कहना, जब इन छोटे छोटे प्राणियों में भी इतना ज्ञान होता है तो इंसान के ज्ञान में भी बहुत क्षमता है। लेकिन क्षमता का जब तक उपयोग नहीं करता तब तक वो ज्ञानावरण का क्षयोपशम क्षयोपशम मात्र है। और जिस समय उस ज्ञानावरण के क्षयोपशम से वो तत्वों को जानने के अभिमुख होता है तब वही ज्ञानावरण का क्षयोपशम क्षयोपशम लब्धि के रूप में परिणत हो जाता है। पहली लब्धि कौन सी है सम्यक प्राप्ति में? क्षयोपशम लब्धि। वो चारों गतियों में हो सकता है लेकिन मन वाला होना चाहिए प्राणी। मधुमक्खी को सम्यक दर्शन नहीं होता और चींटियों में आंखें भी नहीं होती। कभी कभी चींटी निकलती है चौके में तो बोलते हैं कि महाराज आहार देखने आई है। तो एक दिन तो हमने इशारा किया तो फिर यहाँ के लोग अच्छे शिविर अटेंड किए हुए लोग हैं तो समझ गए कि अरे तीन इंद्रिय है आंख नहीं है, तो फिर वो गंध से आ गई होगी खुशबू लेने के लिए। ये तो ठीक है, उनके अंदर इतना विवेक नहीं है। विवेक का मतलब जो मन वाले जीव होते हैं वैसा उनके अंदर नहीं बनता। तो तिर्यंच गति में और मनुष्य गति में संयमा संयम गुणस्थान पांचवा गुणस्थान हो सकता है। तो सम्यक चारित्र का जो एक भेद है देश चारित्र वो यहां बन सकता है। और दूसरा भेद सकल चारित्र है, वो सकल चारित्र केवल कर्म भूमि के मनुष्य में पाया जाता है। और फिर जब ये रत्नत्रय की बात की तो राजवार्तिक में कहते हैं कि दो रत्न तो सब जगह होते हैं भोग भूमि में होते हैं लेकिन तीसरा रत्न केवल कर्म भूमि में होता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि चारों गतियों में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो है लेकिन चारों गतियों में सम्यक चारित्र नहीं है। न देश चारित्र है और न सकल चारित्र है। है तो कहां पर है? सिर्फ कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों में। और तिर्यंचों में देश चारित्र है, मनुष्यों में सकल चारित्र भी है। सकल चारित्र किन के पास है? मुनिराजों के पास। श्वेतांबर मत में एक भिन्न मान्यता है लेकिन दिगंबर मान्यता के अनुसार सकल चारित्र की जो दशा बनती है वो केवल पुरुष पर्याय में निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करने वाले मुनिराज में ही बनती है। क्योंकि सकल संयम में वस्त्र या कोई भी परिग्रह बाधक है। और वस्त्र को अगर अपन परिग्रह न माने उपकरण माने, एक बार इस पर चर्चा हुई श्वेतांबर साधुओं के साथ। 8 श्वेतांबर साधु शिखर जी की यात्रा के लिए निकले, कटनी से गए। तो कटनी नाम का स्थान है मध्य प्रदेश में सतना के पास। तो जब वहां पर चर्चा हुई, एक विद्वान थे जगन मोहन लाल शास्त्री जी, तो उनका कहना था कि आप लोग कपड़े उतारने के बाद ही निष्परिग्रह मानते हैं और हम लोगों को परिग्रह ही मानते हैं। तो पंडित जी ने पूछा कि आपका क्या कहना है? वो बोले कि हमारे कपड़े परिग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में कहा मूर्छा परिग्रह। परिग्रह कपड़ों को नहीं कहा, परिग्रह अपने अंदर जो मूर्छा भाव, मूर्छा का मतलब बेहोशी नहीं है यहां पर, ये व्यावहारिक शब्द कुछ अलग है और फिर शास्त्रीय अर्थ उन्हीं शब्दों के भिन्न है। मूर्छा का अर्थ होता है मूर्छा तु ममत्व परिणाम, ये मेरा है। इस प्रकार भाव किसी के भी प्रति हो आपका तो फिर वो वस्तु परिग्रह मानी जाती है। और मुख्य रूप से उसके 10 भेद किए गृहस्थ की अपेक्षा से, और अंतरंग परिग्रह के 14 भेद किए गए। अब अंतरंग परिग्रह के भी भेद परिग्रह में क्यों किए, उनको 14 भावों को परिग्रह में क्यों ग्रहण किया, क्रोध है, मान, माया, लोभ, फिर पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति आदि, इनको परिग्रह क्यों माना, क्योंकि इनमें भी ममत्व होता है। कई बार आप देखिएगा व्यावहारिक जीवन में भी कभी कोई ऐसी चर्चा निकल आती है तो फिर वो सामने वाला बोलता है मेरा गुस्सा जानता नहीं तू, आ गया मेरा, तो गुस्सा के साथ में जो मेरा लग गया हो गया परिग्रह। रिकॉर्डिंग चल रही है और फिर किसी बात पर बहुत लोग हंस गए, बाद में जब कैसेट प्ले करते हैं तो हंसी सुन करके बोल ये मेरी हंसी, मेरी क्या हो गया। तो जिसके प्रति अपनत्व होता है वो परिग्रह होता है। उन्होंने कहा कि हमारा वस्त्रों के प्रति मूर्छा भाव नहीं है, इसलिए वस्त्र हमारे परिग्रह नहीं हो सकते। तब फिर पंडित जी भी बहुत हाजिर जवाब थे बीरबल जैसे, उन्होंने कहा कि अगर वस्त्रों के प्रति आपका मूर्छा भाव नहीं है, यानी वस्त्र के पास आप नहीं गए, वो वस्त्र अपने आप आपके बदन से लिपट गए, यानी वस्त्रों ने आपको धारण किया, वस्त्रों को आपके प्रति मूर्छा है, आपको वस्त्रों के प्रति मूर्छा नहीं है, यही घटित करना पड़ेगा। और क्या आप बताइए, इसका और क्या खुलासा हो सकता है। था तो थोड़ा विनोदपूर्ण उत्तर, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया कि पंडित जी कह तो ठीक रहे हैं कि जब तक अपनी मूर्छा न हो तब तक किसी वस्तु का अर्जन, संरक्षण और वर्धन संभव नहीं। तत्वार्थ वार्तिक में परिग्रह के स्वरूप के अंतर्गत ये तीन बातें बताई, अर्जन, संरक्षण और संवर्धन। अब इनमें अर्जन माने हमने अपनी चर्या में ये स्वीकार करके रखा है कि वस्त्रों की हमारे लिए छूट रहेगी, रास्ता खुल गया अर्जन का। फिर संरक्षण, इन वस्त्रों को हम संभालते भी हैं, इनकी देखरेख भी करनी पड़ती है। संवर्धन, मौका पड़ता है तब वो स्थिति भी बन जाती है। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि हमारी मूर्छा नहीं है वस्त्रों से, और वस्त्र चूंकि जड़ है, अचेतन है, इसलिए अचेतन वस्तु किसी से मूर्छा करती नहीं। अजीव वस्तु किससे मूर्छा करे, अजीव वस्तु किसको बोलेगी ये मेरा है। आपका मकान आपसे कहता है कि मैं तेरा हूं, या आप कहते हैं कि तू मेरा है, बताओ। उन्होंने उस समय कोई जवाब नहीं दिया, और वहां से जब विहार हुआ, विहार करके शिखर जी पहुंचे, तो संयोग से पंडित जी भी उतनी अवधि के बाद वहां शिखर जी में मिल गए उनको। तब वहां पर उनमें से जो एक, कुछ लोग थोड़े कट्टर होते हैं और कुछ लोग थोड़े से बड़ी दृष्टि वाले होते हैं, तो उनमें किसी ने कहा पंडित जी से, पंडित जी हमारी मूर्छा है क्या। देखो अपनी गलती अगर कोई स्वीकार कर ले, आज करे या 10 दिन बाद करे, तो गलती को स्वीकार करना सुधार का प्रथम चरण है। अपनी भूल को भूल मान लेना सुधार का द्वार है। जब तक व्यक्ति अपनी भूल को भूल की श्रेणी में नहीं रखता तब तक सुधरना संभव नहीं है। तो स्वामित्व के अंतर्गत सम्यक चारित्र का स्वामी कौन होता है, इसकी चर्चा आती है, तो फिर वहां पर खुलासा हो जाता है कि सम्यक चारित्र का स्वामी कर्म भूमिया जीव ही होता है, सर्वत्र चारों गतियों में सम्यक चारित्र नहीं बनता। तो फिर यहां पर अपन ने कल स्वामित्व का विस्तार पढ़ना प्रारंभ किया था। सामान्यतः सम्यक्त्व का स्वामी कौन है, तो जीव है। अब विशेष, विशेष का अर्थ क्या होता है, कि जो जीवों के भेद प्रभेद हैं उनकी अपेक्षा से विचार करें तो फिर सम्यक दर्शन के स्वामी कौन कौन से जीव कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हैं, और सम्यक दर्शन भी एक नहीं है, सम्यक दर्शन भी अनेक है। कोई कर्मों के उपशम से होने वाला सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन, कर्मों के क्षयोपशम से होने वाला क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, क्षय से होने वाला क्षायिक सम्यक दर्शन, ऐसे ये भेद प्रभेद हो जाते हैं। कल जिन्होंने पहली बार सुना होगा उनको थोड़ा कठिन लगा होगा, लेकिन आज हम इसीलिए इसको सरल बना करके इतना विस्तार करके आपको बताना चाह रहे हैं कि सबको वो चीज़ आनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अभी आज आप लोग इतने लोग सुन रहे हैं, यहाँ पर दो चार दिन ये विषय चलता रहा उसी स्पीड से, तो फिर आप उतनी ही स्पीड से यहाँ आना बंद कर दें। तो इसका खुलासा भी होना जरूरी है। यद्यपि हमने पहले कहा है कि भले समझ में ना आए तो भी बैठना चाहिए, पहली बार तो किसी को नहीं आता समझ में, धीरे 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 अभ्यास होता है तो समझ में आता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का सब्र जवाब दे जाता है। माने क्या होता है कि धैर्य टूट जाता है कि अब चार दिन तो हो गए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कब तक बैठेंगे हम, तो ऐसा करते करते फिर उनको चलो ठीक है फिर भी महाराज ने कहा है कि बैठना चाहिए चलो बैठ लेते हैं, फिर बैठते हैं, फिर कुछ भी नहीं मन लगता, कुछ समझ में नहीं आता। तो कभी कभी कुछ लोगों को नींद भी आती है, जब समझ में नहीं आता कोई विषय तो फिर वो माने नींद की गोली से भी बढ़िया काम करती है वो चीज़ जो समझ में ना आती हो। तो क्या करें, फिर ऐसा करने से फिर ये भी मालूम है कि भाई शास्त्र सभा में नींद लेने से पाप का बंद होता है, तो इससे अच्छा तो घर पर चद्दर तान के थो जाओ, आना बंद हो जाता है। तो इसलिए इतना खुलासा करके बताएं कि स्वामित्व का अर्थ होता है कि उस सम्यक दर्शन का स्वामी कौन हो सकता है। तो सामान्यतः जीव हो सकता है। अब जीव बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत विस्तार है जीवों का, तो अब उसको विशेष रूप से देखने के लिए फिर चार गतियों में विभाजित किया जीवों को, इनको मार्गणा कहते हैं। अब सामान्य में क्या होता है कि गुणस्थान ले लेते हैं और विशेष में मार्गणा ले लेते हैं। अब मार्गणा जो होती है, मार्गणा इस शब्द का अर्थ होता है ढूंढना, मार्गणा शब्द का हिंदी अनुवाद ढूंढना, खोज करना, जाहि व जासु व जीवा मग्गित जनते, जिनमें अथवा जिनके माध्यम से जीवों की खोज की जा सके उसको मार्गणा कहते हैं। गुणस्थान भी 14 होते हैं, मार्गणाएं भी 14 होती हैं। तो अब मार्गणाओं में सबसे पहली मार्गणा है गति मार्गणा, और गति मार्गणा के अंतर्गत चार गतियां हैं। तो चार गतियों में कल अपन ने पढ़ा था गत्यनुवादे इन्हें नरक गतो, पहली गति को नरक गति करके सर्वासु पृथ्वीशु, नरक गति में सम्यक दर्शन किसके पास होता है उसकी चर्चा है। तो सब पृथ्वियों में, सब यानी सात पृथ्वियों में नारकाणाम पर्याप्तकानाम, जो पर्याप्तक नारक हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ऐसे दो प्रकार के जीव होते हैं विभिन्न गतियों में। अपर्याप्तक का अर्थ होता है जो अभी प्राण धारण की शक्ति जुटा रहे हैं, अभी शक्ति प्राप्त नहीं कर सके हैं, और उस शक्ति को कहते हैं पर्याप्ति। जैसे उदाहरण के लिए भाषा पर्याप्ति जिसकी पूर्ण हो जाती है, फिर उसके साथ में और भी कुछ कर्मों का संयोग होता है, और उस संयोग से फिर वो बोलने में जब सक्षम हो जाता है तो वो वचन बल नाम का प्राण हो गया। तो वचन बल प्राण किसका कार्य हुआ, भाषा पर्याप्ति का। और वचन बल का कारण क्या हुआ, वही भाषा पर्याप्ति। तो कारण कारण होता है और कार्य कार्य होता है। कारण हो गया भाषा पर्याप्ति और कार्य हो गया वचन बल प्राण। तो प्राण और पर्याप्ति में कारण कार्य भेद है, ठीक है ना। तो जब ये शक्तियां प्राप्त नहीं होती जीव को, तब उस जीव को अपर्याप्तक कहते हैं माना जाएगा। और वचन बल उसके वचन योग भी रहता है, वो जैसा भी अपने अव्यक्त में जो भी कैसा भी कुछ करता हो, वचन योग रहता है उसमें। जैसे क्या है कि गर्भ में जब उसको वेदना होती है, गर्भस्थ शिशु को गर्भ अवस्था में अगर माँ खड़े होकर भोजन करती है तो उसको बहुत पीड़ा होती है बच्चे को, और बहुत सारा उसका विस्तार से वर्णन है कि कैसी कैसी स्थिति में उसको तकलीफ हो सकती है। तो वो जो वेदना होती है, तो उस वेदना में क्या होता है कि जिस जीव के अंदर वचन बल है उसके अंदर एक कराह और एक पीड़ा वचन द्वारा व्यक्त होती है, तो वो वचन योग हो गया उसका, क्योंकि उसके पास वचन बल है। वो तो जब आया था गर्भ में तब उसने पर्याप्तियां ग्रहण की थी, और पर्याप्तक होने के बाद अब उसके पास 10 प्राण हैं। जन्मे हुए जीव के अंदर श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और फिर गर्भस्थ शिशु के अंदर भी श्वासोच्छ्वास की क्षमता होती है, वो मां के रक्त का ऑक्सीजन ग्रहण करने में सक्षम होता है। एक हेपेटोपोर्टल सिस्टम होता है, ये तो क्या है कि सब वैज्ञानिक जानकारियां हैं। तो यहां से लीवर से उसको, मां के लीवर से बच्चे को पूरा भोजन तत्व प्राप्त होता है, मां का खाया हुआ भोजन, और उस भोजन के जो तत्व है रस आदि, वो रक्त में जब मिश्रित होते हैं, रक्त में मिश्रित होकर के जब लीवर में हेपेटोपोर्टल सिस्टम के द्वारा गर्भ तक जाते हैं, तो गर्भस्थ शिशु का उससे पोषण होता है। ये बहुत ही दर्दनाक हिस्सा है अपने जीवन का। अपनी पर्याय का जो पहला 9 महीने का भाग है उसको भूल गए, इसलिए आज मस्ती में दिन काट रहे हैं। अगर याद करो कि गर्भ में कैसी वेदनाएं सहन की थी, तो लगेगा कि अब दोबारा जन्म न हो। और दोबारा जन्म कैसे न हो, समझदार समझते हैं कि जन्म न होने के लिए ये मोक्ष मार्ग ही पकड़ना पड़ता है, और कोई चारा नहीं है। राग द्वेष करने से तो बार बार जन्म मरण होता रहता है। तो फिर वो वचन बल वहां पर होता है। तो अपर्याप्त कौन हुआ, जिसने अभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की। और पर्याप्त कौन हुआ, जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी है। तो यहां क्या कहा कि 4 गतियों में से जो नरक गति है, नरक गति में 7 पृथ्वियों में जो पर्याप्तक नारक हैं, उनके औपशमिक और क्षयोपशमिक 2 प्रकार के सम्यक दर्शन हो सकते हैं। 3 प्रकार के होते हैं सम्यक दर्शन, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक। तो ये 2 प्रकार के सम्यक दर्शन उनको हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जीव यहां से सम्यक दर्शन को साथ लेकर के नहीं जाते, क्योंकि जो भी साथ लेकर के जाएगा वो अपर्याप्त अवस्था में भी सम्यक दृष्टि होगा और पर्याप्त अवस्था में भी सम्यक दृष्टि रहेगा। अपर्याप्त में सम्यक दृष्टि नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर के नहीं गया है, और वहां पर्याप्त होने के बाद नरक में जो निमित्त होते हैं सम्यक दर्शन के, 2 कारण होते हैं नरक में सम्यक प्राप्ति के। कौन से 2 कारण होते हैं? एक तो वहां की वेदना है, और फिर एक तीसरी पृथ्वी तक के नरक बिलों में अगर कोई उपदेश दे दे जाकर के, और उपदेश वो कभी आपस में देने नहीं वाले। नरक के जीव आपस में तो एक दूसरे को देख करके बिल्कुल लाल आंख लेकर के मारने दौड़ते हैं, कोई भी सम्यक दृष्टि हो या कोई भी हो। अभी किसी ने अपना एक अभिमत रखा था कि सम्यक दर्शन वाले जो नरकवासी हैं, नारक, वो मारते होंगे क्या किसी को? उनका विचार ये था कि वो मारते कूटते नहीं हैं, वो जब कोई मारने आता है तो फिर डिफेंस करते हैं। लेकिन ऐसा आगम नहीं है, वो उनका विचार था। क्योंकि कारण उसका ये है कि सम्यक दर्शन की महिमा का इतना वर्णन विस्तृत हुआ है इस पिछले 50 वर्षों में कि सम्यक्त की महिमा को सुनकर के लोग सोचते हैं कि अरे सम्यक्त यानी तो, और सिद्धांत पढ़ो तो पता चलता है कि अयदोति छले सौ, 4थे गुणस्थान तक कृष्ण लेश्याएं भी होती है, 6 लेश्याएं होती है। अयदोति असंयम अवस्था में 1ला गुणस्थान, 2रा, 3रा, 4था, 4 गुणस्थान असंयम के हैं। तो इन असंयम के गुणस्थानों में छहों लेशाएं हो सकती है, और कृष्ण लेशा का स्वरूप क्या है? चंडो न मुयदि वीरम भंडन सीलो ये धम्म दय रही हो। और इसके आगे की एक पंक्ति गुमटसार जीव कांड में आती है, लेशा की गाथा, लेशा का स्वरूप क्या है? लखन मेदंतु किन्नस, तीसरा चरण छूट रहा है, देखो आ जाए तो ट्यूबलाइट चालू हो जाए तो बता देते हैं। तो क्या कह रहे हैं, चंडो बहुत तीव्र क्रोध करता है, चंडस अत्यंत कोपन है, अमर कोश में चंड शब्द का अर्थ दिया है अत्यधिक क्रोध करने वाला। न मुयदि वेरम, वैर हो गया किसी के साथ तो छोड़ता नहीं, कृष्ण लेशिया का लक्षण बता रहे हैं, वैर हो जाए तो छोड़ेगा नहीं बदला लिए बिना। न मुयदि वेरम भंडन सीलो, गालियां भी बोल सकता है, सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुणस्थान वाला गालियां दे सकता है, और धम्म दय रही हो, रत्नत्रय से और दया से रहित होगा वो। अब आप ये समझते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव बड़ा दयालु होता है, लेकिन नहीं, कृष्ण लेशा अगर हो जाए तो फिर दया एक तरफ रह जाएगी। सराग सम्यक में प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक ये चार लक्षण हैं, लेकिन ये जिस लेशा के साथ दिखाई दे सके वहीं तक दिखेंगे। अगर कृष्ण लेशा में कोई पहुंच गया तो फिर क्या स्थिति बनेगी, और कदाचित कृष्ण लेशा पंचम गुण स्थान में भी हो जाती है, क्योंकि रौद्र ध्यान बिना कृष्ण लेशा के नहीं होता, आर्त ध्यान तीनों लेशिया में हो सकता है, अशुभ लेशियाओं में, तो रौद्र ध्यान होता है कि नहीं पंचम गुण स्थान में, बराबर होता है। हिंसा नृतस्ते विषय संरक्षणीभ्यो रौद्र मविरत देश विरत यो हो, तत्वार्थ के नवम अध्याय में सूत्र है। अविरत को तो होता ही है पहले के चार गुणस्थान वालों को, और देश विरत यो हो, देश विरत जो है पांचवे गुणस्थान वाला व्रती, उसको भी हो सकता है। और इसका नमूना भरत चक्रवर्ती है। भरत चक्रवर्ती को बहुत लोग असंयमी समझते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि समझते हैं, लेकिन नहीं। जयसेन स्वामी की टीका देखेंगे आप समय सार, अथवा आदि पुराण देख लो, भरत व्रती थे अव्रती नहीं थे, लेकिन उनको कितना बाहुबली के ऊपर आवेश आ गया था। ये स्थितियां होती है कदाचित। तो आर्त ध्यान के गुणस्थान प्रमत संयत तक के हैं, तद अविरत देश विरत प्रमत संहिता नाम सूत्र है ना, तद अविरत देश विरत प्रमत संहिता नाम, तो अविरत देश विरत और प्रमत संयत गुणस्थान तक आर्त ध्यान हो सकता है। और फिर इसीलिए तो उसका खुलासा किया, जब पूछा कि भाई इन मुनियों को कौन सी लेशिया होती है पुलाक बकुश आदि को, तो बोले बकुश प्रतिसेवना कुशीलियो, बकुश और प्रतिसेवना कुशील को षडपी छह लेशियाएं हो सकती है। कथम इति चेत, कैसे हो सकती है? तो फिर उपकरण के निमित्त से कदाचित आर्त संभवात, किसी काल में आर्त ध्यान हो जाए तो फिर वो अशुभ लेशिया हो जाती है, क्योंकि आर्त ध्यान की लेशिया कौन सी है उस अपेक्षा से। तो सम्यक दर्शन के स्वामी कौन है, इसकी बात अपन ने अभी आज दोहराई है कि नरक गति में सातों पृथ्वियों में पर्याप्तक अपर्याप्तक आपको समझ में आ गया ना, ये बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये नहीं समझते तो फिर बार बार इसमें वो शब्द आते और आपके ऊपर प्रहार होते जाते, धड़ाक धड़ाक धड़ाक, ये क्या चल रहा है बोले, तो ये समझ में आ गया तो फिर अब आपकी धीरे धीरे गति आगे बढ़ सकती है ना, बराबर वही तो बोले। निदान वर्जन, वो तो ठीक है, भविष्य के सुखों की आकांक्षा मुनि में नहीं हो सकती, लेकिन पीड़ा हो सकती है। नाम आदि निक्षेप से प्रस्तुत किए गए
सम्यक दर्शन आदि और जीवादि, इनको जानने के लिए, विशेष जानने के लिए ये 6 उपाय और हैं। प्रमाण और नयों से तो जाना ही जाता, लेकिन इनसे भी जाना जा सकता है। निर्देश यानी स्वरूप का कथन करना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ये सम्यक दर्शन का निर्देश हो गया। फिर दूसरा जो है स्वामित्व, स्वामित्व यानी उसका स्वामी कौन है, तो अब इसका जवाब एक तो सामान्य उत्तर होगा स्वामी कौन, जीव। फिर विशेष अगर करें तो फिर जीव के भेद प्रभेदों में जाना पड़ेगा। अब जीव के भेद प्रभेदों में ये तो निश्चित है कि सम्यक दर्शन पंचेंद्रिय मन वाले जीव को ही प्राप्त होता है। फिर 14 मार्गणाएं हैं, मार्गणा यानी खोज करना, तो 14 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जीवों को खोजा जा सकता है, ढूंढा जा सकता है, तो उन 14 मार्गणाओं द्वारा फिर सम्यक दर्शन किसको होता है इसका खुलासा करते हैं। अजीव का निर्देश, जीव विलक्षणो जीव, जीव से जो विपरीत लक्षण वाला है वो अजीव, ये निर्देश हो गया। फिर अजीव का स्वामित्व कौन है, तो जीव को छोड़कर जो 5 द्रव्य है वो अजीव के स्वामी है, यानी अजीव तत्व किन के पास पाया जाएगा, अजीव स्वरूप किन का होगा, तो जीव के अलावा जितने द्रव्य हैं उनका होगा। जैसे यहाँ पर सम्यक